20 फरवरी दिन मंगलवार, दिन भर मैं हूँ रेहान फदल। दिल्ली में आपके विधायकों पर मुख्य सचिव के साथ मारपीट और बदसलूकी के आरोप।
हमारी डिमांड है कि दिल्ली के जो ब्यूरोक्रेटिक हेड हैं, उस पर जो ये इस तरीके का एजॉल्ट है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, वी आर नॉट सेफ। अगर इसे हमला होगा चीफ सेक्रेटरी पर, तो बाकी कर्मचारी का क्या होगा।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जूता मोजा पहनकर परीक्षा देने पर लगाई रोक।
सब तो तैयारी कर आता है, पढ़ कर आता है, अगर उसको बोलेगा कि तुम चीटिंग करते हो तो उसको तो आत्मविश्वास तो घटेगा ना। कुछ लोग बच्चे के चलते सबको सबकी निगाह से देखा जाता है, तो उसके चलते हम लोग को बुरा लगता है।
हालिया बैंक घोटालों पर जानेंगे रिजर्व बैंक के डायरेक्टर विपिन मलिक की राय, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कुलदीप मिश्र से। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का अपनी ही सरकार के मुख्य सचिव से विवाद तूल पकड़ रहा है। आज दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया कि आपके दो विधायकों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में उन्हें पीटा। इसके बाद मुख्य सचिव के आरोपों को खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि वे भाजपा की शह पर हास्यास्पद आरोप लगा रहे हैं। दमिश्क शहर के बाहरी इलाके के पूर्वी घूटा में सीरियाई सरकार की ओर से बम हमले जारी हैं, जिसमें दर्जन भर और मौतें होने की खबर है। सीरिया की सरकारी सेनाएं इस क्षेत्र को घेर कर लगातार हमले कर रही हैं। कार्यकर्ताओं के मुताबिक बीते 24 घंटों में 100 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। बीते कई बरसों में यह पूर्वी घूटा में हुई सबसे भीषण बमबारी और मौतों की घटना है। मरने वालों में बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था यूनिसेफ ने यह कहते हुए बयान के तौर पर एक खाली कागज जारी किया है कि मरने वालों के साथ इंसाफ करने वाले कोई शब्द उपलब्ध नहीं है। पूर्वी घूटा में रहने वाले मोहम्मद आदिल ने बीबीसी से कहा,
We have a very, very hard times, almost daily shelling from the first of this year. Yesterday and today morning was the hardest.
हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। इस साल की शुरुआत से ही लगातार गोलीबारी हो रही है। कल और आज की सुबह सबसे ज़्यादा मुश्किल थी। कल 97 मौतें हुई, आम लोग मारे गए और ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। 500 लोग घायल हुए हैं, लोग बहुत ही डरे हुए हैं। ये थे पूर्वी घूटा के निवासी मोहम्मद आदिल के शब्द। बांग्लादेश के अधिकारियों ने कहा है कि म्यांमार सरकार 5,000 से ज़्यादा रोहिंग्या मुसलमानों को वापस लेने पर सैद्धांतिक तौर पर राजी हो गई है। हालांकि इस वापसी की कोई तारीख अभी तय नहीं की गई है। म्यांमार की ओर से इसकी पुष्टि भी अभी नहीं हुई है, पर बांग्लादेश की ओर से इस समझौते का दावा किया गया है। बांग्लादेश सरकार ने म्यांमार प्रशासन को करीब 8,000 ऐसे नामों की सूची सौंपी थी जो म्यांमार में अपने घर लौटना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों का कहना है कि स्वेच्छा की स्थिति में ही उन्हें जाने देना चाहिए। म्यांमार के रखाइन प्रांत में पिछले साल हुई हिंसा के बाद करीब 7 लाख रोहिंग्या मुसलमानों ने जान बचाकर सीमा पार बांग्लादेश में शरण ले ली थी। यूरोपीय संघ की सर्वोच्च अदालत में कहा गया है कि पोलैंड ने अपने आखिरी बेहद पुराने जंगल में पेड़ काटे जाने की इजाज़त देकर यूरोपीय संघ के कानून का उल्लंघन किया है। अदालत के महाधिवक्ताओं में से एक ईव बोट ने कहा कि बियालोवीजा जंगल में पेड़ काटे जाने से संरक्षित नस्ल के जानवरों के प्रजनन क्षेत्र तबाह हो जाएंगे। उनकी राय मानने के लिए अदालत बाध्य नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में अदालत उनकी संस्तुतियों को मान लेती है। पोलैंड ने कहा है कि वह अदालत के आदेश का पालन करेगा। ये मामला यूरोपीय संघ और पोलैंड की दक्षिणपंथी सरकार के बीच चल रहे कई विवादों में से एक है। ईव बोट के विचार पढ़ते हुए महाधिवक्ता मेल्चियोर वथलेट ने कहा कि पोलैंड ने यूरोपीय संघ के नियमों का उल्लंघन किया है।
La République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent.
पोलैंड ने प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के संबंध में दिए गए परिषद के निर्देशों के अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 1 और 3 और अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 1D का उल्लंघन किया है। ये थे यूरोपीय संघ की सर्वोच्च अदालत में महाधिवक्ता मेल्चियोर वथलेट के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र ने कांगो गणतंत्र के दक्षिण पश्चिम हिस्से में मानवता पर असाधारण पैमाने की आपदा की चेतावनी दी है। UNHCR ने कांगो गणतंत्र के तांगनयिका प्रांत से जान बचाकर भाग रहे लोगों से बात की है, जिन्होंने अपने गांवों पर हुए हमले के दौरान हिंसा की भयावह कहानियां साझा की हैं। इसमें हत्या, अपहरण और बलात्कार के आरोप भी लगाए गए हैं। 30 लाख की आबादी में से 6,30,000 अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं। 14 महीने पहले विस्थापितों की संख्या लगभग इससे आधी थी। जनवरी से कांगो की टुकड़ियों और स्थानीय मिलिशिया के बीच हिंसक संघर्षों में काफी बढ़ोतरी हुई है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विधायकों पर मुख्य सचिव से मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगाया गया है। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया है कि सोमवार शाम केजरीवाल के घर पर हुई बैठक में उनके साथ धक्का मुक्की, मारपीट और बदसलूकी की गई। अब मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुख्य सचिव से हुई कथित मारपीट के बाद दिल्ली के सरकारी अफसर हड़ताल पर चले गए हैं। गुरप्रीत कौर की रिपोर्ट।
दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार का अपने मुख्य सचिव से विवाद गरमाता जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया कि आपके दो विधायकों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में उन्हें पीटा। उन्होंने कहा कि पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ने उनका कॉलर पकड़कर उनके साथ बदसलूकी की। इन आरोपों को आम आदमी पार्टी ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मुख्य सचिव ऐसा बीजेपी की शह पर कर रहे हैं। आप नेता दिलीप पांडे ने कहा,
ये मामला मारपीट का है ही नहीं। शुरुआती दौर में मीडिया ने ये भी खबरें चलाई कि जो एडवर्टाइजमेंट रोका था उस मामले में बातचीत हुई थी और उसमें ये बवाल हुआ है, जबकि ये सीधे सीधे दिल्ली के लोगों के राशन के मामले से जुड़ा हुआ मसला है। 2.5 लाख लोगों को पिछले एक महीने से राशन नहीं मिल रहा है। इस दर्द को भारतीय जनता पार्टी के नेता समझने को तैयार नहीं है, लिहाजा अपने इशारे पर दिल्ली की जनता के हितों को ताक पे रख के वो कभी एलजी ऑफिस का इस्तेमाल करते हैं तो कभी अधिकारियों का इस्तेमाल करते हैं।
वही केंद्र पर काबिज बीजेपी ने इस घटना की निंदा करते हुए आम आदमी पार्टी को दिल्ली में संवैधानिक संकट खड़ा करने का दोषी करार दिया। पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा,
आज दिल्ली के लिए बहुत चिंताजनक विषय इसलिए है क्योंकि दिल्ली के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, एक संवैधानिक संकट आन पड़ा है। पूरे हिंदुस्तान में हमने ऐसा वाकया पहली बार सुना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अब शब्दों का बौछार करते हैं मुख्य सचिव के ऊपर और उनके इशारों पर उनके विधायक दिल्ली के कार्यपालिका के मुख्य सचिव के ऊपर लात घूसों की बारिश करते हैं।
दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव सबऑर्डिनेट सर्विसेज एसोसिएशन और IAS एसोसिएशन मुख्य सचिव के समर्थन में उतर आई है। मुख्य सचिव पर हमले के विरोध में एसोसिएशन हड़ताल पर चली गई है और आरोपी विधायकों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रही है।
हमारी डिमांड है कि दिल्ली के जो ब्यूरोक्रेटिक हेड हैं उस पर जो ये इस तरीके का रिजल्ट है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। वी आर नॉट सेफ, वी आर ए फैमिली, वी आर ए ब्यूरोक्रेटिक फैमिली। अगर इसे हमला होगा चीफ सेक्रेटरी पर तो बाकी कर्मचारियों का क्या होगा।
इस बीच आम आदमी पार्टी एक वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगा रही है कि कर्मचारियों ने पार्टी के विधायक और सरकार के मंत्री इमरान हुसैन और उनके निजी सचिव के साथ सचिवालय में मारपीट और बदसलूकी की। इस संबंध में पार्टी ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। वहीं इससे पहले पार्टी के एक और विधायक प्रकाश जरवाल ने कमिश्नर ऑफ पुलिस को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि कल रात की मीटिंग में मुख्य सचिव ने उनके लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। गुरप्रीत कौर, BBC दिल्ली।
भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर के सरकार के वरिष्ठ मंत्री नईम अख्तर ने कहा है कि हाल के सालों में पड़ोसी देश चीन कश्मीर में सीधे तौर पर हस्तक्षेप बढ़ा रहा है। नईम अख्तर का कहना है कि यह भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। उनका कहना है कि इसे नियंत्रित करने के लिए भारत को पाकिस्तान के साथ जल्द से जल्द बातचीत शुरू करनी चाहिए। हालांकि कश्मीरी राजनीतिक दल PDP के सीनियर नेता की बात के दूसरे मतलब भी लगा रहे हैं। सुनिए पूरा ब्यौरा फैसल मोहम्मद अली से।
अलगाववाद की समस्या झेल रहे विवादित क्षेत्र में चीन की बढ़ती भूमिका की बात कश्मीर सूबे के किसी मंत्री की तरफ से पहली बार आई है। जम्मू कश्मीर के PWD मिनिस्टर नईम अख्तर ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा है कि कश्मीर समस्या अब सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच इस हिस्से पर दावों का नहीं है, अब चीन भी इसमें शामिल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की साझा सरकार के सीनियर मंत्री ने यह भी कहा है कि हाल के आतंकवादी हमलों में जिस संस्था जैश ए का नाम बार बार आ रहा है उसे चीन का संरक्षण हासिल है। नईम अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान में जिस तरह चीन का प्रभाव बढ़ रहा है उसके मद्देनजर भारत को पाकिस्तान से बात करने में देरी नहीं करनी चाहिए ताकि चीन के पाकिस्तान पर बढ़ते प्रभाव पर लगाम लगाई जा सके और कश्मीर समस्या के निपटारे में वो किसी तरह का अड़ंगा न डाल सके। भारतीय कश्मीर के मंत्री से ये साक्षात्कार करने वाले इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता मुजम्मिल जलील कहते हैं कि नईम अख्तर के बयान के महत्व का संदर्भ समझा जाना जरूरी है।
चाइना एंड पाकिस्तान का रिलेशनशिप हैज बीन देयर फॉर लॉन्ग, 4-5 डेकेड से, और कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है अभी ये 26-27 साल पुरानी बात है। अभी तक चाइना को लेके ऐसे किसी भी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बात की नहीं थी और ना चाइना ने ऐसे कभी इंटरवीन भी किया था पहले, एग्जाम्पल यूएन में बहुत सारी बातें इंटरनेशनली हो रही थी ना।
चीन और भारत के संबंध कई मामलों में पहले से ही तनावपूर्ण रहे हैं। चीन ने न सिर्फ तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के अरुणाचल प्रदेश जाने पर एतराज जताया, बल्कि अरुणाचल से अपने यहाँ जाने वाले लोगों को स्टेपल्ड वीजा देना शुरू कर दिया। और तो और, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तर पूर्वी प्रदेश यात्रा पर भी नाराजगी का इजहार किया है। हाल के सालों में उसने कई दफा पाकिस्तानी हाफिज सईद और मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किए जाने की कोशिशों पर संयुक्त राष्ट्र में अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर उसे रुकवा दिया है। भारत सईद को मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड बताता है, तो मसूद अजहर का हाथ इंडियन एयरलाइंस की विमान के अपहरण में बताया जाता है। भारतीय कश्मीर के मंत्री ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान को कश्मीर समस्या पर जल्द से जल्द बात करनी चाहिए, लेकिन सामरिक मामलों के जानकार सुशांत सरीन नईम अख्तर के बयानों को थोड़ी सच्चाई और थोड़े अटकलों वाला बताते हैं। थोड़ी सच्चाई में सरीन संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रस्ताव पर चीन के वीटो का उदाहरण देते हैं, लेकिन कहते हैं कि कश्मीर के भीतर चीन के हस्तक्षेप को लेकर अभी तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आए हैं।
कश्मीर के अंदर जिस तरीके से राजनीति होती है, और वो राजनीति का एक पहलू ये जरूर रहता है कि विकेट के दोनों तरफ खेलो, तो एक तरफ ये दिखाओ कि भाई हम तो पाकिस्तान से बातचीत करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल उसका संदेश भारत सरकार के ऊपर शायद इतना नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी सोच रखने वाले जो हैं, या पाकिस्तानी जो हैं, या जो कुछ दहशतगर्द तंजीमें हैं, शायद एक लिहाज से उनके तरफ एक ऑलिव ट्री बनाने की कोशिश की है।
सरीन के मुताबिक पाकिस्तान और चीन पहले ही काफी करीब आ चुके हैं, और उसमें किसी तरह की दूरी पैदा कर पाना या रोक लगा पाना मुमकिन नहीं है। सरीन तो पाकिस्तान को चीन का सैटेलाइट स्टेट तक बताते हैं, लेकिन श्रीनगर में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार अल्ताफ हुसैन कहते हैं कि ये बात वोटों की नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लोग इस बात से उनके लिए वोट करेंगे, लेकिन ये एक इनका एक पक्ष है, इनका स्टैंड रहा है पहले दिन से। मुझे याद है जब नरेंद्र मोदी जी आए थे पिछली बार, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री थे, तो मुफ्ती साहब ने उनको यही बात सुझाई थी कि बातचीत करनी पड़ेगी स्टेक होल्डर्स के साथ, पाकिस्तान के साथ भी, यहाँ भी जो सेपरेटिस्ट हैं। तो मोदी साहब ने उस समय उनको स्नब किया था, उन्होंने कहा था मुझे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं, मुझे पता है मुझे क्या करना है।
भारत और पाकिस्तान के वर्तमान संबंध फिलहाल इस कदर खट्टे हैं कि कश्मीरी मंत्री के बयान का उस पर शायद ही कोई प्रभाव पड़ेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच के मसले के तौर पर देखे जाने वाले कश्मीर को मंत्री के बयान ने एक नया आयाम दे दिया है। फैसल मोहम्मद अली, BBC दिल्ली।
क्या भारतीय रिजर्व बैंक देश के बैंकिंग इतिहास के सबसे बड़े घोटाले यानी PNB वित्तीय धोखाधड़ी को रोक सकता था? कई लोग उंगलियां RBI की तरफ उठा रहे हैं, और भारतीय मीडिया के अनुसार वित्त मंत्रालय ने भी केंद्रीय बैंक को इस घोटाले को रोकने में नाकामी पर इसे लताड़ा है। हमारे साथी जुबैर अहमद ने RBI के पूर्व डायरेक्टर विपिन मलिक को फोन कर पूछा कि क्या RBI को इसका जिम्मेदार ठहराना सही है।
देखिए, जिम्मेदारी की बात जब आएगी वो तो जब कोई इंक्वायरी करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, तभी पता लगेगा। इस तरह प्रीएम्प्ट कर लेना कि तुम जिम्मेवार था, मेरे हिसाब से तो ये ठीक नहीं है। हाँ, डेफिनेटली RBI का रोल तो है, क्योंकि बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन बना था 2004 में, और उसका पर्पस ये था बैंकिंग रिफॉर्म के लिए कि फाइनेंशियल बोर्ड जो है सुपरवाइज करेगा सारे बैंकों को, और उनकी एक एक चीज बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन बेस्ड ऑन द इंस्पेक्शन जो रिपोर्ट होती थी रिजर्व बैंक की और बाकी ऑडिटर्स की, वो सारी एनालाइज करता था। फेलियर तो हुआ है, अब कहाँ किसका फेलियर है, नॉस्ट्रो अकाउंट्स की रिकंसलेशन किसने की ये अभी तक नहीं पता, क्यों नहीं की, क्यों नहीं ये CBS सिस्टम जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन था वो कनेक्ट हुआ।
ये हम समझना चाह रहे हैं कि आम तौर से अगर इस तरह की जो स्कैम के पोटेंशियल हैं उसकी जिम्मेदारी आखिरकार किस पर आती है, RBI पे या और दूसरी संस्थाओं पे?
देखिए जी, अभी तक तो RBI पे कभी भी ऐसी चीजों की लायबिलिटी नहीं आई, लेकिन इस बार ही लगता है, क्योंकि जब हर्षद मेहता का भी 91 में स्कैम हुआ, जब वो कमेटी बनी पार्लियामेंट की, उसमें भी उन्होंने RBI को फेलियर्स काउंट किए थे, उसमें कोई डाउट नहीं है।
आपको लगता है कि इससे पॉलिटिकल डैमेज हुआ है सत्तारूढ़ पार्टी को इस तरह के स्कैम से?
पॉलिटिकल डैमेज तो हुआ ही है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। जो रात को रोज तू तू मैं पॉलिटिकल पार्टीज की होती है, उसका मतलब यही है कि डैमेज एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो डैमेज तो है ही है।
अब थोड़ा देर से जागे, लेकिन सीबीआई जब इंक्वायरी कर रही है जनवरी से जहाँ तक हम लोगों को बताया गया, तो क्या आप मुतमईन है, संतुष्ट है कि सही रास्ते पे चल रही है इंक्वायरी?
देखिए साहब, पुलिस की इंक्वायरी तो पुलिस की इंक्वायरी होती है, वो तो होती रहेगी। विंसेंट डायमंड की इंक्वायरी कई सालों से चल रही है, 3 सालों से। ताजा करोड़ तो वो भी लेके चला गया था। तो ये तो अब तो इन्वेस्टिगेशन है, मल्टीपल एजेंसीज का इन्वेस्टिगेशन है, एक जाएगा दूसरा आएगा। जो असली चीज होनी चाहिए, रिजर्व बैंक को इमीडिएटली अप्रोच करना चाहिए टू द डिफरेंट रेगुलेटर्स ऑफ द वर्ल्ड कि हमारे यहाँ फ्रॉड हुआ है, इसको हमारा पैसा रिकवर कराने की मदद करिए।
आरबीआई के विपिन मलिक से बात कर रहे थे जुबैर अहमद।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 9510, 9540, 11945 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। बड़ी मात्रा में बैंकों के रुपए न चुकाने और कथित तौर पर धोखाधड़ी करने के आरोप में सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों की टीमों ने कानपुर में विक्रम कोठारी के ठिकानों पर मंगलवार को भी छापेमारी की। बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम ने कोठारी परिवार की महिलाओं से भी पूछताछ की है। इस बीच विदेश भागने की आशंकाओं पर विक्रम कोठारी ने अपनी सफाई दी है। पूरा घटनाक्रम पर पेश है समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
कानपुर में कोठारी परिवार के घर और उनके प्रतिष्ठानों पर सीबीआई की कार्रवाई मंगलवार को भी जारी रही। सीबीआई ने विक्रम कोठारी की रोटोमैक कंपनी और उसके अन्य डायरेक्टर्स के खिलाफ बैंक की शिकायत पर केस दर्ज किया है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने भी विक्रम कोठारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने उनके घर से बैंक डिटेल्स, प्रॉपर्टी के कागजात, पेन ड्राइव, लैपटॉप और परिवार के सभी सदस्यों के पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं। कानपुर के वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण मोहता इन कार्रवाईयों पर शुरू से नजर रखे हुए हैं। उन्होंने बीबीसी को ये जानकारी दी।
9:10 के आसपास जो कोठारी परिवार का जो बंगला है संतुष्टि तिलक नगर में, वहाँ से परिवार की कुछ महिलाओं को निजी कारों से और सरकारी कारों से लेकर सीबीआई के अधिकारी शहर के बैंकों में गए थे। कहा यह जा रहा है कि परिवार की महिलाओं के साथ लॉकर वगैरह चेक करे गए हैं, इसकी कोई हालांकि पुष्टि नहीं है, लेकिन सीबीआई के कुछ अधिकारी मॉल रोड पर कोटक महिंद्रा बैंक की ब्रांच में ट्रेस हो गए। मीडिया कर्मियों ने बैंक के मैनेजर से बात करनी चाहिए तो बैंक के दरवाजे बंद कर लिए गए। कल शाम को ये पहली जानकारी सार्वजनिक होती है कि एफआईआर हुई है। 3695 करोड़ रुपए की कुल देनदारी है विक्रम कोठारी और उनकी कंपनियों पर। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय ने भी एक एफआईआर दर्ज की है, लेकिन कानपुर के स्तर पर इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। जो भी जानकारियां मिल रही हैं वो मीडिया के अलग अलग स्रोतों से मिल रही हैं।
प्रवीण मोहता के मुताबिक सीबीआई मुख्य रूप से दो पहलुओं पर जांच कर रही है। पहला ये कि बैंकों ने इतना बड़ा लोन दिया तो इस प्रक्रिया में मानकों पर कितना ध्यान रखा गया। दूसरे ये कि विक्रम कोठारी ने कौन सी प्रॉपर्टी के आधार पर बैंकों से लोन लिया है। हालांकि विक्रम कोठारी और उनके वकील यही कह रहे हैं कि उन्होंने किसी तरह का फ्रॉड नहीं किया है और बैंक लोन का मामला भी ट्रिब्यूनल में लंबित है। इस बीच खबर ये भी आ रही थी कि विक्रम कोठारी देश छोड़कर भाग सकते हैं। इन आशंकाओं का जवाब देने के लिए खुद विक्रम कोठारी एक वीडियो संदेश के जरिए मीडिया के सामने आए।
बैंक से लोन जरूर लिया है, ये गलत है कि मैंने चुकता नहीं किया है। मेरा बैंक का एक NCLT के अंदर केस चल रहा है और उसके अंदर जो विवाद है उसमें निष्कर्ष पूरा निकलेगा। मैं कानपुर का निवासी हूँ, कानपुर में ही रहता हूँ और कानपुर में ही रहूँगा। भारत देश से महान कोई नहीं है, मैं कहीं नहीं, कानपुर में ही रहूँगा।
बताया जा रहा है कि विक्रम कोठारी ने अपनी कई कंपनियों के माध्यम से बैंकों से करीब 4000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। उन पर टैक्स चोरी के भी आरोप हैं। पूरा मामला तब सामने आया जब विक्रम कोठारी के खिलाफ 600 करोड़ रुपए का चेक बाउंस होने का केस दर्ज हुआ। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी, लखनऊ।
कर्नाटक में चुनावी गहमा गहमी शुरू हो गई है। कल जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में थे, वहीं आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह आज कर्नाटक के दौरे पर हैं। दोनों पक्षों के बीच वाकयुद्ध बदस्तूर जारी है। इमरान कुरैची की रिपोर्ट।
कर्नाटका में चुनावी गर्मी को बढ़ाने के लिए जो भी सामग्री की जरूरत है वो कल और आज दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिद्धरामैया के बीच मिल गई है। कल प्रधानमंत्री ने मैसूरु के चुनावी रैली में इल्जाम लगाया कि कर्नाटका में कांग्रेस सरकार सिर्फ 10% नहीं बल्कि 10% से भी ज्यादा कमीशन की सरकार है। आज सिद्धरामैया ने पत्रकारों से कहा,
बेजवाबदारी
क्या उनके पास कोई सबूत है, कोई दस्तावेज है कि वो इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान देते हैं? नीरव मोदी तो पंजाब नेशनल बैंक को धोखा देकर भाग गया, क्या हम उसको भागने के लिए मौका देते थे? वो उनके साथ दावोस तक भी चला गया था, वो प्रधानमंत्री रहने के लायक नहीं है। गुजरात के मुख्यमंत्री बनकर जो कुछ नहीं करना था वो उन्होंने कर दिखाया। गुजरात में लोकायुक्ता नहीं बनाया गया। ये थे सिद्धरामैया के शब्द। प्रधानमंत्री ने कल ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि कर्नाटका सरकार गृह निर्माण योजना के लिए पैसा तो लेते आ रहा है लेकिन उसने वो पैसा खर्च नहीं किया। कर्नाटका सरकार ने इसका भी फौरन खंडन किया और कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य को आधा पैसा भी नहीं दिया। इसके बावजूद कर्नाटका ने 1,37,000 घर बनाया है। दिलचस्प बात यह है कि कर्नाटका सरकार लगातार आंकड़ों समेत बयान देती जाती है लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह अपना इल्ज़ाम फिर से दोहराते जाते हैं। जैसे कि उन्होंने आज बंटवाल में कहा कि कर्नाटका सरकार को केंद्र कितना पैसा देती है। अमित शाह ने कर्नाटक के तटीय तालुक सूरतकल में पत्रकारों से कहा,
बिल्कुल बेबुनियादवाद है। किसी भी कार्यक्रम मानो आप लोग बैठे हो, हमारी फोटो भी हो जाएगी, इसमें से कोई कुछ करेगा तो मेरे साथ जुड़ जाएगा क्या? इस तरह की फोटो को मुद्दा बनाना बहुत नीची राजनीति है, मगर इस मामले पर भारत सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। 5,000 करोड़ से ज्यादा की मूल्य की चीजें जब्त कर 3 ही दिन के अंदर, आधे से ज्यादा रकम अभी तय नहीं है कितना है, वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट, मगर बहुत बड़ी अमाउंट वापस लाने का काम किया है और इस पर कठोरता से सरकार कार्यवाही करनी है।
अमित शाह ने अपने बूथ कार्यकर्ताओं से एक दिलचस्प बात भी कही,
मेरा इतना ही कहना है कि 3 विधानसभा के सभी बूथों से जो नवशक्ति सम्मेलन में आए हुए बूथ के कार्यकर्ता है, सीपी रवि ने उनको डिटेल बात करी, समझाया है कि चुनाव के अंदर हमने किस तरह से किया, यही रणनीति के आधार पर आप सभी ने चुनाव के अंदर अपनी अपनी भूमिका जो तय हो इसको अच्छे तरीके से। मेरे कर्नाटक के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है कि कोई प्रत्याशी को न देखे, कैंडिडेट कौन है उसको हम न देखे, हम कमल के फूल और नरेंद्र मोदी की तस्वीर को देखकर कर्नाटक के चुनाव।
जाहिर है कि जब चुनाव आयोग अगले महीने विधानसभा का चुनाव का ऐलान करेगा तो इस तरह के इल्जाम और बढ़ सकते हैं। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
बिहार बोर्ड की कल से शुरू हो रही मैट्रिक परीक्षा को नकल से मुक्त बनाने के लिए कई रोचक इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सेंटर सुपरिटेंडेंट सहित सभी लोगों द्वारा कैमरा युक्त स्मार्टफोन के उपयोग पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसा प्रश्न पत्रों को परीक्षा के दौरान वायरल करने से रोकने के लिए किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के जूता मोजा पहनने पर भी रोक लगा दी गई है। उन्हें परीक्षा देने चप्पल पहनकर आना होगा। पटना से मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
परीक्षा केंद्रों पर एक ओर छात्रों को जूता मोजा पहनकर नहीं आना है तो वहां मौजूद शिक्षकों को स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करना है। परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए ऐसे कुछ रोचक निर्देश बीते कुछ दिनों में बीएसईबी ने दिए हैं। जूते मोजे पर प्रतिबंध इस कारण लगाया गया है कि छात्र परीक्षा केंद्रों पर चिट यानी नकल का पुर्जा नहीं ले जा सकें। वहीं स्मार्टफोन के उपयोग पर पाबंदी प्रश्न पत्रों को परीक्षा के दौरान वायरल करने से रोकने के मकसद से लगाई गई है। दिलचस्प यह भी कि बोर्ड ने कहा है कि जिन सेंटर सुपरिटेंडेंट्स के पास साधारण फोन नहीं है उन्हें इसकी खरीद के लिए बोर्ड 1200 रुपये देगा। परीक्षा के बाद यह फोन उन्हें बोर्ड को लौटाना होगा। इस फैसले से कई परीक्षा केंद्रों के अधीक्षक परेशानी में हैं। जैसा कि समस्तीपुर जिले के राजेंद्र प्रसाद बताते हैं,
यह है कि अगर कोई आपत्ति आ जाती है, कोई विशेष परिस्थिति हो जाती है तो ऐसी स्थिति में केंद्र अधीक्षक क्या कर सकता है जब उसके पास कुछ नहीं रहेगा। जैसे किसी को कदाचार में पकड़ रहा है तो हम भी अपने मोबाइल से चेक कर रहा है,
जूते मोजे पर प्रतिबंध से स्टूडेंट भी नाराज हैं। पटना की सीमा कुमारी का परीक्षा केंद्र मशहूर गोलघर के पास स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है। आज जब वह अपने केंद्र को देखने आई थी तो उन्होंने कहा,
सब तो तैयारी कर कर आता है, पढ़ कर आता है। अगर उसको बोलेगा कि तुम चीटिंग करते हो तो उसको तो आत्मविश्वास तो घटेगा ना। कुछ लोग बच्चे के चलते सबको सबकी निगाह से देखा जाता है तो उसके चलते हम लोग को बुरा लगता है।
बीएसईबी का कहना है कि केंद्रीय और राज्य स्तर की कुछ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तर्ज पर उसने जूते मोजे पर पाबंदी और दूसरे कदम नकल रोकने के लिए उठाए हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि बोर्ड नकल करके नकल रोकने की तैयारी कर रहा है। साथ ही जानकारों का यह भी मानना है कि स्कूली स्तर पर गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई का इंतजाम किए बगैर ये उपाय दिखावा साबित होंगे। जैसा कि शिक्षा शास्त्री ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी कहते हैं,
मैं ये मानता हूँ कि आपको शिक्षकों और बच्चों पर ये विश्वास करना होगा और परीक्षा में किसी भी तरह का प्रयोग उपयोग करने के पहले ये तय करना होगा कि आपने जो पाठ्यचर्या निर्धारित की थी क्या उसके अनुसार आपके यहाँ पढ़ाई लिखाई के काम चले या नहीं चले। यदि आप इसको सुनिश्चित नहीं कर सकते तो इस तरह के स्वांग, इस तरह के नाटक बराबर चलते रहेंगे या आने वाली पीढ़ी के साथ धोखा है और कुछ नहीं।
बिहार में कल से शुरू हो रहे मैट्रिक की परीक्षा में करीब 18 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। ये सूबे के 1400 से अधिक केंद्रों पर परीक्षा देंगे। परीक्षाएं 28 फरवरी को समाप्त होंगी। मनीष शांडिल, BBC पटना।
और अब नजर दौड़ाते हैं खेल समाचारों पर।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं सुमिरन प्रीत कौर। शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली खेल के इतिहास में एक साथ टेस्ट और अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय की रैंकिंग में 900 अंक के आंकड़े को पार करने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। भारत के विराट कोहली और दक्षिण अफ्रीका के AAB डिविलियर्स ने ऐसा मुकाम हासिल किया है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही क्रिकेट श्रृंखला में T20 फॉर्मेट के पहले मुकाबले में भारत ने जीत दर्ज की। भारत के इस दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर भारत के विराट कोहली ने 4 शतक बनाए और एक सिंगल टूर में 1000 रन बनाने से वो सिर्फ 130 रन पीछे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय टूर में 1000 रन बनाने वाले एक लौते बैट्समैन हैं विवियन रिचर्ड्स, तो कैप्टन विराट कोहली से ये नया रिकॉर्ड सिर्फ 130 रन दूर। साउथ अफ्रीका के इस दौरे पर जहां टेस्ट सीरीज में भारत को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद शानदार वापसी की भारतीय क्रिकेट टीम ने, और इसका श्रेय जाता है भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को। ऐसा कहना है भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री का।
जब आपका लीडर ऐसा हो जो एक अच्छे उदाहरण की तरह हो तो बाकी खिलाड़ी भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। मुझे इस टीम पर गर्व है। इंटेंसिटी इस टीम की ताकत है, इस टीम के कैप्टन की ताकत है, और टीम की अच्छी परफॉर्मेंस का श्रेय टीम के कैप्टन को भी जाता है जो खुद भी अच्छा परफॉर्म करता है।
तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कल T20 मैच सेंचुरियन में। अब बात करते हैं टेनिस की। यूकी भांभरी भले ही चेन्नई ओपन चैलेंजर टूर्नामेंट के फाइनल में हार गए, लेकिन इस अच्छे प्रदर्शन के दम पर वो हाल ही में जारी हुई ताज़ा ATP एकल रैंकिंग में 11 पायदान की लंबी छलांग लगाकर फिर से शीर्ष 100 में जगह बनाने के करीब पहुंच गए हैं। रामकुमार रामनाथन भारतीय खिलाड़ियों में यूकी के बाद दूसरे स्थान पर हैं। वहीं महिलाओं की WTA रैंकिंग में सानिया मिर्जा 14वें स्थान पर बनी हुई हैं। खेल की दुनिया से फिलहाल इतना ही।
और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में उन्हें पीटा। इसके बाद मुख्य सचिव के आरोपों को खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि वे भाजपा की शह पर हास्यास्पद आरोप लगा रहे हैं। दमिश्क शहर के बाहरी इलाके के पूर्वी घूटा में सीरियाई सरकार की ओर से बम हमले जारी हैं, जिसमें दर्जन भर और मौतें होने की खबर है। सीरिया की सरकारी सेनाएं क्षेत्र को घेर कर लगातार हमले कर रही हैं। बांग्लादेश के अधिकारियों ने कहा है कि म्यांमार सरकार 5,000 से ज्यादा मुसलमानों को वापस लेने पर सैद्धांतिक तौर पर राजी हो गई है, हालांकि इस वापसी की कोई तारीख अभी तय नहीं की गई है। यूरोपीय संघ की सर्वोच्च अदालत में कहा गया है कि पोलैंड ने अपने आखिरी बेहद पुराने जंगल में पेड़ काटे जाने की इजाजत देकर यूरोपीय संघ के कानून का उल्लंघन किया है। अदालत के महाधिवक्ताओं में से एक यूबोट ने कहा कि बियालोवीजा जंगल में पेड़ काटे जाने से संरक्षित नस्ल के जानवरों के प्रजनन क्षेत्र तबाह हो जाएंगे। BBC समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। सभी साथियों के साथ रेहान फजल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।